फोन कर लो सर, फोन कर लो।
कृष्ण का जन्म भागवत में वर्णन है। कृष्ण के जन्म का सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम त्रिसत्य परम सत्य। इस संसार में परम सत्य की स्थापना करें। कृष्ण का जन्म का नाम नहीं है, नाम किसका है? सत्य का। परम सत्य, सत्य की स्थापना करने, सत्य गर्भ में सत्य समय पर प्रवेश कर रहा है। कृष्ण जन्म का इस तरह का बताया है कि परम सत्य का जन्म है, ये कोई मनुष्य का जन्म नहीं है। मतलब कृष्ण को परब्रह्म या परमात्मा बना है ना संसार में। कृष्ण अर्थात कृष्ण शब्द का अर्थ
काली माँ को आकर्षित करना,
जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण। तो शिव बाबा का एक नाम कृष्ण भी है क्योंकि वो सर्व को आकर्षित करता है, पर वो अगर बाबा कह दे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाबा वो नहीं कहेंगे, वो गोपाल भी है। गोपाल अर्थात गैया जो है उनको चराने वाला, सब आत्माएं गैया है और वो गोपाल है। वो केशव भी है, वो गोविंद भी है। गोविंद अर्थात गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों का जो स्वामी है वो गोपाल। गोपी वल्लभ की गोपिया
नहीं है, किसी ने बताया गो माने वस्त्र की माने हार।
गो शब्द के कई अर्थ है,
गो शब्द का अर्थ है ज्ञान।
गो शब्द के एक अर्थ नहीं है, कई सारे अर्थ है गो शब्द के। गो मतलब गैया, गो मतलब इंद्रिय,
पी जाओ पहले
ज्ञान रस, मतलब ज्ञान रस, ज्ञान
अमृत माधव माधव कई सारे, कई सारे अच्युत, अच्युत भी है, राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव, दामोदर भी कृष्ण का नाम, असंख्य नाम। विश्व में सबसे ज्यादा भक्ति किसकी होती है? कृष्ण की, कृष्ण की होती है। शिव की बात
लॉर्ड कृष्ण,
लॉर्ड कृष्ण विदेशी एस्कॉन जो संस्था है वो सारे विश्व भर में फैली हुई है, उसमें तो खाली कृष्ण की ही पूजा होती है।
जो राधे पंथ के होते वो मानते कृष्ण,
वो राधा को ज्यादा मानते,
राधा स्वामी राधा
क्योंकि ये गायन है कि कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली राधा है। क्यों? वो एक जो सीन दिखाया हुआ है गोवर्धन का, अभी प्रश्न ये है कि गोवर्धन किसने उठाया, तो किसने उठाया गोवर्धन?
गांव वाले
तो नहीं, कृष्ण ने उठाया। पर वो कहते हैं कि कृष्ण ने भी नहीं उठाया, वो राधा की दृष्टि से उठाए, वो राधा देख रही है उसको, वो राधा की दृष्टि से वो उठाए गोवर्धन। तो जो राधा पंथी है, जो राधा स्वामी वाले, जो भी राधा को ज्यादा ज्यादा मानते, क्योंकि कृष्ण देव है तो राधा आत्मा, इस तरह का गायन है कृष्ण और राधा,
इसीलिए राधा स्वामी बोलते, राधा माने आत्मा।
और ये राधा भी एक चरित्र ऐसा है, वो भी बहुत, जिसका कोई वर्णन नहीं है ज्यादा। कृष्ण के जीवन में दिखाया है कि राधा जो है उससे कई साल बड़ी थी, उसका अपना एक पति भी है,
दूसरे घर के बहू है,
वो दूसरे घर की बहू है, उसके सामने कृष्ण तो छोटा सा बच्चा है, परंतु उसको कृष्ण से बहुत आकर्षण है। कहीं एक जगह दिखाया है कि कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह भी हुआ है, जो ब्रह्मा ने कराया है, वो भी दिखाया हुआ। और दूसरी एक बात ऐसी है कि राधा और कृष्ण, जैसे ही कृष्ण गोकुल से चला जाता है, उसके बाद में राधा का क्या हुआ इसका कहीं वर्णन ही नहीं है, कहीं पर वर्णन नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ इसका कहीं वर्णन नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि राधा और कृष्ण दोनों को एक प्रकार से शाप रहता है कि दोनों का कभी यहाँ स्थूल विवाह नहीं होगा, भक्ति की बात इनकी कभी नहीं होगी। इसके लिए मंदिर किसके हैं? राधा कृष्ण का मंदिर है, परंतु राधा कृष्ण और रुक्मिणी ऐसा मंदिर नहीं है। रुक्मिणी या कृष्ण का मंदिर होगा या राधा और कृष्ण का मंदिर होगा,
अलग
अलग अलग जो भी मंदिर है कृष्ण का वो रुक्मिणी के साथ है। अभी उसमें एक बहुत सोच विचार करके किसने ऐसा भी कहा है कि जो रुक्मिणी है वही राधा है, राधा आदि शक्ति है, राधा के ही सारे रूप है, ऐसा भी मानना है। उसमें यहाँ तक भी बताया कि वो जो पूतना उसको लेने आती है, वो राधा एक्चुअली उधर रहती है पहले, जहाँ वो है रुक्मिणी है, वो पूतना उसको लेके जाके उधर गोकुल में डाल देती है, तो वो वहां बड़ी होती है और फिर वापस अपने घर आती है। तो वो राधा और रुक्मिणी एक ही व्यक्ति है, ऐसे भी कई लोगों का तर्क है। तो ये ऐसे बहुत विवादास्पद है सब, इतना उसमें ये है कि क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए सूत्र जो है वो मूंझ गया है, बहुत सारे रहस्य है, क्योंकि भागवत शास्त्र में राधा का कोई नाम नहीं है, वर्णन नहीं है, नाम नहीं है राधा करके, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। खाली एक गोपी जो कि कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय थी, ऐसा वर्णन है।
अच्छा।
राधा के नाम का वर्णन कहीं नहीं है
भागवत,
भागवत राधा का नाम का वर्णन नहीं है, राधा नाम ही नहीं है उसमें। जो मूवी एक बनी हुई है बहुत पुरानी, 71-72 कृष्ण के ऊपर, उसमें तो राधा को बहुत बड़ा बताया, उसका पति भी दिखाया होगा, और कृष्ण उसके सामने छोटा सा बच्चा दिखाया।
आज ही
हमने देखे, आज ही राधे के लिए नहीं, हम
लोग बातें तो होती रहेगी।
तो आज बाबा ने
विश्व की
सर्वश्रेष्ठ आत्मा, एक तो वो मुरली चली, एक दादियों से मुलाकात पे मुरली चली, एक यूपी के जोन से बाबा बात कर रहे, एक आगरा जोन से बाबा बात कर रहे, और हम चालू करते आगरा से।
आगरा मशहूर है,
आगरा मशहूर है, किस लिए मशहूर है? पेठा मशहूर है, ताजमहल के लिए मशहूर है,
मेंटल हॉस्पिटल के लिए,
मेंटल हॉस्पिटल के लिए मशहूर है। तो बाबा यहाँ बात कर रहे हैं बंधनों की, निर्बंधन और बंधन युक्त और बंधन मुक्त अवस्था की, जीवन युक्त और जीवन बंध और जीवन मुक्त अवस्था की। बाबा शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? भाग्य की स्मृति दिला रहे, सर्वश्रेष्ठ भाग्य तुम्हारा, वारे में, वो तो नहीं, यहाँ बोला वाह मैं, वाह मेरा पार्ट, वाह 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 ड्रामा। ये स्मृति भी अगर रहती है तो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, तो सतयुग में भी जीवन मुक्ति है, परंतु यहाँ की जीवन मुक्ति का महत्व उससे अधिक ज्यादा है, उससे अधिक है। सतयुग की भी जीवन मुक्ति है, पर यहाँ अनुभव यहाँ करना है। तो बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त अवस्था अर्थात निर्बंधन के साथ जोड़ा, बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें बताए, ट्रस्टी एक बताया, एक बच्चा बताया और एक पुराने संस्कार बताया। बच्चा अर्थात निर्बंधन, ट्रस्टी अर्थात निर्बंधन, गृहस्थी अर्थात बंधन, बूढ़ा समझना अर्थात बंधन, बच्चा समझना अर्थात निर्बंधन, पुराने संस्कार वाला समझना अर्थात बंधन, मर्जीवा जन्म के संस्कार वाला समझना अर्थात निर्बंधन, स्वतंत्र। उस दिन भी मुरली चली ना, स्वतंत्र, सच्ची सच्ची स्वतंत्रता बाप दिलाने आए हैं
रावण के जंजीरों,
रावण के जंजीरों को। तो आज याद किया बाबा ने, पिंजरे को तोड़ना है। बंधनों की लिस्ट सुनाई बाबा ने, कौन कौन सी उसमें है, दो तीन पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। मन के बंधन जैसे क्या करूं, चाहता हूं पर कर नहीं सकता, मेरे से होता नहीं, यह है मन के बंधन। तन के बंधन, बीमारी,
अशांति,
बीमारी सारे जो भी है। एक बोला बाबा ने संबंध के भी बंधन, ये तीन बंधन का वर्णन किया आज बाबा ने। ऐसे तो बंधन तो कई सारे है, पुराने संस्कारों के बंधन, वृत्तियों के बंधन, स्वभाव के बंधन, देहबान के बंधन, सारे सारे बंधन ही बंधन। बाबा ने कहा ये पिंजड़ा है, तो तुम कौन, तुमको क्या नहीं बनना है, पिंजड़े की मैना नहीं बनना है, कौन सी मैना बनना है, स्वर्ग की परिया, स्वर्ग की मैना। मैना काला
नहीं,
तोता नहीं होता, उसका आवाज सुंदर होता है, इंग्लिश में स्काईलार्क कहा जाता है। स्काईलार्क, लार्क, लार्क
पक्षी होता है,
पक्षी मैना।
कलकत्ता चिड़ियाखाना में गया ना, मैंने बोला यहाँ मैना तो दिखने ही पड़ता है, साथ बोलते यहाँ मैना तो दिखने पड़ता है।
अच्छा जो आपने बोला वो रिपीट कर रही है,
लेकिन होती तो रहती है, बताते हैं
छोटा गले में पीला पीला है, छोटा पंछी है,
छोटा पंछी
क्या मैंने दिखाई नहीं पड़ा। हाँ
मैं जो बोला ना
वही रिपीट
किया, रिपीट कर दिया
उसने।
आपने क्या बोला, मैंने बोला मैं बंगाल में बोल रहा हूँ, तो इसका अर्थ है मैं यहाँ पे कोई मैंने दिखाई नहीं पड़ता है, तो बोल रहे यहाँ तो कोई मैंने दिखाई
बंगाली वाला
तो बाबा ने कहा पिंजड़ा, बंधन अर्थात पिंजड़ा, इस पिंजड़े को तोड़ना है, जो भी बंधन है उन सब को तोड़ना है, ज्ञान योग की शक्ति से, ये भी बोला। और जो जीवन मुक्त आत्मा है वो उनके सामने क्या भी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उनको क्या अनुभव होगा, जैसे वो
खेल,
खेल खेल किस लिए खेला जाता है, मनोरंजन के लिए खेला जाता है। तो उसमें एक बताया कि जो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो मुक्त है इसके लिए सब कुछ खेल अनुभव होगा। अभी जिनको ये खेल अनुभव होगा वही जीवन मुक्त है, सर्कल कंप्लीट किया। जो जीवन मुक्त है उनके लिए ही खेल है, और जो खेल समझते हैं वही जीवन मुक्त है। तो जो कुछ हो रहा है सब कुछ खेल समझो, फर्ज अदाई भी, कर्म भी जो फर्ज अदाई भी कर रहे हैं वो भी जैसे खेल समझ के करो, लगाव के वश नहीं। जो कर्म कर रहे हो, जो ड्यूटी कर रहे हो, वो भी फर्ज अदाई भी खेल है, उसको भी खेल समझ के करो, ड्यूटी समझ के नहीं, लगाव समझ के नहीं। तो जीवन मुक्त सब खेल समझेंगे, जीवन मुक्त किस किस से मुक्त, निर्बंधन से जोड़ा बाबा ने उसको, ट्रस्टी से जोड़ा, बच्चे से जोड़ा, बच्चा अर्थात स्वतंत्र, बच्चा अर्थात निर्बंध,
बच्चा अर्थात जीवन मुक्त,
बच्चा अर्थात जीवन मुक्त, एक ही शब्द है सर, एक ही शब्द को बाबा अलग 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 रीति से। तो हमको निरंतर अपने आप को ट्रस्टी समझना तो जीवन मुक्त, बच्चे समझेंगे तो जीवन मुक्त, मर्जी वा जन्म वाला समझेंगे तो जीवन मुक्त, गृहस्थी समझेंगे तो जीवन बंद, बूढ़ा समझेंगे तो जीवन बंद,
स्वर्ग की परी समझेंगे,
स्वर्ग की पिंजड़े का पंछी समझेंगे तो जीवन बंद,
खेल समझेंगे,
खेल समझेंगे तो जीवन मुक्त, खेल नहीं समझेंगे केवल फर्ज अदाई है तो वो भी जीवन बंद है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त,
खेल समझो,
खेल। और खेल तो होगा ही ना, उस दिन भी बोला था ना बाबा ने, पांच खिलाड़ी माया के और पांच खिलाड़ी प्रकृति के। अभी खिलाड़ी खेल ना करे ऐसा हो सकता है क्या? दस खिलाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, शरीर के साथ कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करने वाले। दस खिलाड़ी माया के, पांच खिलाड़ी माया के और पांच खिलाड़ी प्रकृति के। अभी खिलाड़ी खेल ना करेंगे हो नहीं सकता, खिलाड़ियों को खेल करना ही है। अभी खिलाड़ी जब खेल करते तो खेल का दुख के लिए थोड़ी खेला जाता है, मनोरंजन के लिए। उसमें ये नहीं है ये हार रहा है ये जीत रहा है, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा, जो हार रहा है उसको भी दुखी नहीं होना है। तो हमको खेल खेलना भी है और खेल साक्षियों के देखना भी है, दोनों बातें। हम खिलाड़ी भी है तो दर्शक भी है,
दोनों
है। दर्शक खेल खेलते समय भी अपने आप को ज्यादा दर्शक समझो, स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है क्योंकि हम उसमें, इसके लिए हम अपने आप को देख नहीं पाते। अभी अपने आप को देखने का प्रयास कर, वो रामायण में दिखाया है वशिष्ठ जब राम को सिखा रहा है सब कुछ तो अंतिम पाठ पढ़ाता है कि राम इस संसार को साक्षी होके देखो। तो बोलते मैं कैसे देखूं इस संसार को साक्षी होके, मुझे तो कर्म करने होते हैं। तो बोलते मैं तुझे दिखाता हूँ, उसके सर पर हाथ रखते हैं, फिर दिखाया दोनों का सूक्ष्म शरीर ऊपर जा रहा है, फिर वो बात कर रहे हैं। तो वशिष्ठ उसको कहता है देख, वो वशिष्ठ बैठा है बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है, देख कैसे सिखा रहा है सबको, समझता है मैं गुरु ये शिष्य है, उसका अभिमान तो देखो। तो बोलते
वशिष्ठ
को मतलब वो साक्षी होके अपने आप को देख रहा है कि देख कितना अभिमान है उसमें, कितना अहंकार है। तो राम कहता है अरे पर वो तो अच्छा कर्म कर रहा है ना, सिखा रहा है, पर वो भी बंधन है, उसमें भी अनासक्त होकर ही करना, नहीं तो वो बांध देगा। हर कर्म बांधता है,
कर्म भी बांधता,
सब बांधता है, जो कुछ कर रहे हो सब।
मेरे अलावा कोई कर ही नहीं
सकता, निष्काम कर दो, बाप के अलावा कोई कर ही नहीं सकता इस संसार में, कोई नहीं कर सकता। जो भी हम कर्म कर रहे हैं स्वार्थ प्रेरित कर्म है, सब कुछ स्वार्थ है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे कर्म निष्काम होने का हमको प्रयत्न करना है। सारी गीता जो लिखी हुई है एक ही सिद्धांत पर लिखी है, निष्काम कर्म योग। बस गीता का जो सार है लौकिक वो है निष्काम कर्म योग, उसके आधार से आज मैनेजमेंट में इतने सारी स्टडीज हो रही है, वही सिद्धांत लिया है ऑफिसर्स ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, वही है कि जो कर्म कर रहे हैं ना कंपनी को ये मत सोचो नुकसान फायदा, बस काम करते रहो तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। मतलब अभी इसके ऊपर क्लासेस होते हैं उनके बिजनेस मैनेजमेंट के, निष्काम कर्म योग गीता प्रवचन उस आधार से। तो गीता तो पूरी लिखी है उसके ऊपर कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो,
नहीं
तो बंधन आ जाएगा, अवश्य मिलेगा ही, पर वो भी अनासक्त भाव से। नहीं तो अर्जुन तो एकदम निराश हो गया, वो कहता है अभी मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं तो जा रहा हूँ हिमालय, ये तो बंधन है। तो कृष्ण क्या कहता है, अरे तुमको खाली निमित्त बन के करना है, मैंने तो सबको मार चुका हूँ ऑलरेडी, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम निष्काम भाव से करो बस, यही तुम कर सकते। तो और भी कोई पॉइंट है उसमें, बस इतना ही
है। जमा भी होता है और लास्ट में
हाँ जीवन मुक्त जो है, नहीं वो दूसरी जो आदि रतन है उनके लिए बाबा ने कहा, जो लंबे समय से सहयोगी है उनके लिए एक बहुत पावरफुल लाइन बाबा ने कही है कि किसी वो किसी भी रूप में कहीं ना कहीं बाबा उनको सहयोग देगा।
और
उनका फिर जमा वर्तमान में अभी अभी तो देगा ही, पर भविष्य के लिए जमा
होगा।
वो तो शुरुआत में जिन्होंने जो कुछ मदद कर
दी ना,
अभी देने का इतना महत्व नहीं, पर पहले जो दिया उसके बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये एक था
आगरा,
आगरा अभी उसके बाद है यूपी, यूपी के लिए क्या कहते हैं बाबा, यूपी की धरनी
महान भूमि,
कौन सी धरनी है यूपी, यूपी की धरनी
भावना वाली,
भावना की धरनी है। और एक धरनी बोला फलीभूत धरनी, क्या महत्व है यूपी का,
नदियों का ज्ञान गंगा,
क्या बात है, कौन है यूपी का, यूपी का कौन है? नहीं यूपी यूपी का क्या महत्व है, यूपी का तो बहुत सारा महत्व है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की।
सबसे बड़ा राज्य राजस्थान।
राजस्थान में यूपी है शायद,
राजस्थान
नहीं, पहले उत्तराखंड जब था उसमें तब वो बड़ा था, 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया।
संख्या के हिसाब से वो
पर जनसंख्या के हिसाब से यूपी से ज्यादा केवल 5 देश है, देश
एक पाकिस्तान
देश देश
क्रॉस करने में ट्रेन से सारी रात लग जाती है, राजस्थान तो खुद क्रॉस हो जाता है।
मेरे ख्याल से राजस्थान बड़ा है शायद, पता नहीं
लंबा है, जेकर बड़ा है।
तो एक विशेषता केवल ऐसे 5 ही देश है, देश जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है, देश एक तो भारत क्योंकि वो उसके अंदर है, एक इंडोनेशिया, एक चाइना है, एक यूएस है और एक ब्राजील है। बस ये इतने 5 ही देश है जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है, बाकी इतना राज्य होकर भी उसकी जनसंख्या देशों से ज्यादा है। फिर उसके बाद में यूपी में तीर्थ स्थान कौन कौन से यूपी वाले
स्थान तो बहुत है,
कौन कौन है? काशी है, इलाहाबाद है, प्रयाग है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, फतेहपुर सिकरी है और
हरिद्वार।
हरिद्वार उत्तराखंड में
बदल गया, उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में चला गया वो, 2000 में बढ़ गया ना,
अयोध्या
अलग हो गया, अयोध्या है, चित्रकूट है, रामपुर है,
वृंदावन है,
वृंदावन है और बोलो
मथुरा
और क्या है, सहारनपुर,
सहारनपुर में क्या है,
कुरुक्षेत्र, अयोध्या। यूपी की जो भूमि है वो केवल क्या कहेंगे जिसको, केवल तीर्थ स्थान नहीं, ऐतिहासिक स्थान भी है वहाँ पर, बरेली, मेरठ, 1857 का जो स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो मेरठ से चालू हुआ है, वहाँ से सिपाही म्यूटिनी, विद्रोह जो किया सिपाहियों ने, तो कहाँ से किया, मेरठ से किया ना, बरेली, मेरठ, झांसी, झांसी कहाँ है, झांसी भी यूपी में ही है, मुजफ्फरनगर, नगर या पुर नगर, वो भी यूपी में ही है, ये सब कुछ यूपी में। हिंदू धर्म और बौद्ध, अभी बौद्ध धर्म, ये तो हिंदू धर्म, अभी बौद्ध धर्म सारनाथ जो है वो भी यूपी में ही है। सारनाथ अर्थात बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन जहाँ दिया, वहां से बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की नींव रखी गई, और फिर बौद्ध धर्म कहाँ, कितना सुदूर प्रांत, कहाँ कहाँ चला गया।
तक्षशिला
किधर है? तक्षशिला तो अफगानिस्तान,
मुल्तान
पाकिस्तान,
पाकिस्तान में मुल्तान।
तो क्रिश्चियन ये उसके बाद में ये फतेहपुर सिकरी के लिए कौन है, वो चिश्ती, शदीम चिश्ती, वो भी इस्लाम का बहुत बड़ा ये है, मतलब तीर्थ स्थान ही कहेंगे। अब ये तो हो गया स्थान, उसके बाद में है नदियां, गंगा और यमुना, ये दोनों भी यूपी में ही है। साहित्य, हिंदी भाषा की जन्म स्थली है यूपी, हिंदी भाषा का जन्म स्थान है, जितने बड़े बड़े लेखक हो गए, कवि होके गए, हरिवंश राय बच्चन, त्रिपाठी, निराला, हरिप्रसाद शर्मा, ये सारे 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 कुछ यहीं हुए हैं। उसके बाद में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी कहाँ हुआ है, क्योंकि बौद्ध जब आया, बौद्ध धर्म जब आया उसके बाद में हिंदू तो पूरा लुप्त हो गया था, परंतु शंकराचार्य नीचे साउथ से आया और सबसे पहले बनारस आया, वहां से उसने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया और फिर बद्रीनाथ को बनाया उधर उत्तराखंड में पहला मठ। तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की भूमि भी यूपी है। सारे बड़े बड़े भक्त, कबीर कहाँ हुआ,
यूपी,
रविदास कहाँ हुआ, रामानंद कहाँ हुआ, तुलसीदास यूपी, ये सारे सारे सूरदास कहाँ हुआ, सब कुछ यूपी।
समझा राम जी,
बड़े बड़ा यूपी का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। साहित्य, उसके बाद में साहित्य तो हो गया, उसके बाद में संगीत, तानसेन कहाँ हुआ, बैजू बावरा कहाँ हुआ, बैजू बावरा, तानसेन भी यूपी। साहित्य की नींव, जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम पे तो भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, तो उस टाइम पे भी यूपी यूपी नहीं था, पर वो ही उसका स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब वही हुए है। हर्षवर्धन वो भी वही हुआ है। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज भी यूपी में है। कन्नौज का राजा जयचंद, जयचंद और पृथ्वीराज के कारण उसके बाद में तो इस्लाम भारत में आया, पतन हुआ भारत का उसके बाद में, तो वो भी वहीं पर है। तो शुरुआत करो वेद काल से, शुरुआत करो बौद्ध काल, हिंदू काल, उसके बाद में भक्ति काल। भक्ति आंदोलन जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से चालू हुआ?
वहीं से।
रामानंद ने जो भक्ति आंदोलन सबसे पहला, उसके सारे शिष्य थे ये सारे बौद्ध सारे, रामानंद थे, वो भी यूपी से ही है। तो बाबा ने आज कहा यूपी की भूमि महान है, तो तुमको महान कार्य करके दिखाना है।
हमको तो पता ही नहीं महान है, आज ही पता चला।
यूपी की भूमि महान है, तो तुमको महान, ये भावना वाली धरती है, ये भक्ति की धरती है। वहाँ पे नदियाँ है, वहाँ पे तीर्थ स्थान, कुंभ मेला कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है, हर 12 साल में एक बार, और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद। सबसे ज्यादा जब मोहम्मद घोरी भारत में आया,
खतरा यूपी में ही है।
मोहम्मद घोरी जब भारत में आया, सबसे पहले उसने कब्जा किया गढ़वाल यूपी, वहाँ से ही चालू हुआ सब कुछ। मुस्लिम तो मुस्लिम राज्य भी सबसे ज्यादा यूपी में ही हुआ। फिर उसके बाद में बाबर, बाबर जब आया और उसने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया, उसके बाद में इब्राहिम बाबर ने जो कुछ किया यूपी साइड में किया सब कुछ यूपी। और अकबर, अकबर ने आया, अकबर आने के बाद में भी उसका शहनशाह, उसने आगरा में ये बनाया ताजमहल, ये सब यूपी। जब हर्षवर्धन का काल था और सम्राट अशोक का समय था, उस समय जो शिल्प कला जो निर्मित हुई, कहाँ से निर्मित हुई? यूपी। जो स्तूप आज जो बना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? खुशीनगर। परिनिर्वाण उसको कहाँ प्राप्त हुआ? खुशीनगर। कहाँ है? यूपी।
सब कुछ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है?
डिस्ट्रिक्ट नहीं पता मुझे। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य के है? 75 यूपी। महाराष्ट्र की अपना महिमा है, यूपी की अपनी महिमा है। हिंदी भाषा की जन्म स्थली है, हिंदी भाषा ने वहाँ पे जन्म लिया। और सबसे पहले आर्य कहाँ आए भारत में? आर्य सिंधु घाटी सभ्यता, एकदम पुरातन चले जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सबसे पहले आर्यों ने अपना डेरा बनाया यूपी में। इसके लिए भारत को आर्य व्रत कहा जाता है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ भक्ति के हिसाब से? यूपी। राम का जन्म कहाँ हुआ?
यूपी।
यूपी ना केवल देवता, अवतार, महापुरुष सब ने यूपी में ही काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ?
तो बाकी से हरिवंश
राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? यूपी। नहीं, जन्म
वहाँ।
अभी बाबा ने आज की मुरली पे आ जाओ, बाबा ने क्या कहा? यूपी क्या है? यूपी का, यूपी है यज्ञ का नियम पूर्वक, नियम पूर्वक पूर्वक तीर्थ स्थान आदि आदि तीर्थ स्थान। क्योंकि सबसे पहले बाबा ने कहा जो विधि पूर्वक नियम नियम पूर्वक निमंत्रण आया वो कानपुर और लखनऊ से आया। दिल्ली से माताओं ने निमंत्रण दिया, दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी और कानपुर और लखनऊ की महिमा अपनी। क्योंकि सबसे पहले वो कौन सी दादी थी मुझे याद नहीं आ रहा है, सुबह से मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कानपुर की एक दादी है गंगे दादी, हाँ वो। तो सबसे पहले उनको वो कोई गृहस्थ वहां से निमंत्रण आया, नियम पूर्वक पहला तीर्थ स्थान यज्ञ का कानपुर और लखनऊ। तो बाबा ने क्या कहा? यहाँ पर ज्ञान नहान कराओ, गली गली में ज्ञान नहान। नहान शब्द का अर्थ
यूपी में स्नान का महत्व ज्यादा है, नहाने का।
नहान का मतलब क्या? एक है नहाना, वो तो उसका एक अर्थ है, दो शब्द है, एक है प्रसाद और प्रसादी। आज की मुरली में दो शब्द आए हैं, दादियों से मुलाकात में प्रसादी शब्द भी आया है। एक है प्रसाद, एक है प्रसादी, एक है नहाना स्नान करना, एक है नहान। जब लाखों लोग एक साथ नहाते हैं दैट इज नोन एज नहान। बाबा ने कहा ज्ञान नहान, गली गली में ज्ञान गंगा बढ़ाओ, गली गली में। बाबा ने कहा यूपी का विस्तार बहुत है, इस विस्तार में ज्ञान का बीज डालो तो कल्प पहले निसल। बाब ने जो फुलवाड़ी बढ़ाई थी अब बढ़ाओ। प्रसाद अर्थात एक आदमी, प्रसादी अर्थात असंख्य आत्माओं को, लाखों लोगों को जो प्रसाद वितरण किया जाता है वो है प्रसादी।
गंगा पर जो पहला स्नान करते हैं कोई कुंभ, उसको भी शायद यही बोलते हैं
नहान, नहान हिंदी शब्द
है। नानी जो है ना वो यही बोलती थी
नहान, ये ज्ञान नहान शब्द जो है ना ये बहुत ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है। बाबा ने ऐसे ऊंचे शब्द का प्रयोग किया है आज मुरली में, ज्ञान नहान।
ये नान शब्द
नानी ने बोला था आज समझ में आया।
नहाने, नहान शब्द का एक अर्थ नहाना भी है और दूसरा अर्थ है सामूहिक। लाखों लोगों ने कुंभ मेले में असंख्य लाखों ने एक साथ नहान, ज्ञान नहान, गंगा नहान। तो बाबा ने क्या कहा यूपी वालों की, कि ये भूमि की महिमा बहुत है, महिमा बहुत है, इसके लिए तुमको भी महान कार्य करने हैं। यहाँ पर, यहाँ पर जगह जगह पर चारों ओर क्या करना है, चारों ओर ज्ञान
गंगाएं,
गंगाएं बहानी है।
यूपी के
और क्या बोला,
वहाँ पे ब्रह्मा जी की कुटी भी बताते
हैं। अच्छा,
ब्रह्मा जी का
कहाँ से,
कानपुर और ये जो एरिया जो है ना जिनका ऐतिहासिक महत्व बहुत है, बरेली, मेरठ, सरानपुर, रामपुर, उसमें और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है छोटे छोटे। बनारस, बनारस को ही वाराणसी भी कहते हैं, बनारस को ही काशी भी कहते हैं। काशी सर्व सप्त मुक्त दायी मोक्ष दायिनी नगरी में एक नगरी काशी है। सप्त मोक्ष दायिनी नगरी जो है, सात दायिनी
अलग अलग बोला जाता है वहाँ पर। ये काशी जो जगह है,
सबसे पहला इसको काशी कहा जाता था, फिर उसको वाराणसी कहा गया, अभी उसको बनारस
कहा
गया।
प्रयाग भी कहते हैं,
प्रयाग अलाहाबाद जो कि यूपी की राजधानी है लखनऊ, परंतु उसकी राज क्या कहेंगे उसको, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ना वो इलाहाबाद, वो राजधानी उसकी वो है,
बदलती रहती है।
पहले राजधानी इलाहाबाद ही थी, अभी लखनऊ हो गई।
एक रुद्रप्रयाग भी है,
वो तो उत्तराखंड में,
गढ़वाल में,
उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो बाबा यूपी से बात कर रहे हैं, इलाहाबाद। तो बाबा ने कहा नई इन्वेंशन करो, क्या कहा, और नई इन्वेंशन करो, नई रूपरेखा दिखाओ, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो कि देखने वाले और सोचने वाले सोचेंगे कभी देखा नहीं है, कभी सोचा नहीं, ऐसी सेवाएं करो,
देखा नहीं सोचा नहीं,
ऐसी सेवा।
मेले कॉन्फ्रेंस तो बहुत किया,
मेले कॉन्फ्रेंस तो बहुत किए, अभी कुछ नया करो, नई रूपरेखा, नई इन्वेंशन, महान कार्य करके दिखाओ, क्योंकि ये फलीभूत धरनी है, ये भावना की धरनी है। सारे भक्त यहाँ, भक्तों ने यहाँ जन्म लिया है, धर्मों की स्थापना यहाँ हुई है,
तीर्थ
स्थान है, बड़े बड़े महान आत्मा है यहाँ जन्म लिया है। अच्छा, यज्ञ
कानपुर में है,
कौन, बैठूर, बैठूर, वेरी गुड, बैठूर, झांसी, नाना साहेब पेशवा, ये सारे जो है ना बैठूर, बिठूर कहते हैं कई लोग, बैठूर भी कहते हैं, नाना पेशवा वो भी वहाँ ही है, ज्योतिबा फुले नगर भी है वहाँ पर, वहाँ पर एक और एक ये भी है क्या, सिद्धार्थ नगर भी है, रामपुर भी वहीं पर है, बहरानपुर,
आप सब चक्कर लगाए हैं,
यह चक्कर भी लगाया,
हम फ्री से निकल के लगा दिया,
जाने की जरूरत नहीं है,
जाने अभी नहीं, पहले
तो और क्या बोला, फिर इतना ही बोला, उसमें तीन काम दिए बाबा ने। सबसे पहला तो जहाँ जहाँ ये फुलवाड़ी ऐसी तैयार करो, उसको बढ़ाओ, जो कल तो पहले वाली बाप की फुलवाड़ी, फुलवाड़ी अर्थात
बच्चे,
फुलवाड़ी अर्थात शब्द, फुलवाड़ी
बगीचा,
बगीचा, फूल, फुलवाड़ी में बच्चे, आंगनवाड़ी में, ऐसे कविता है ना, फुलवाड़ी अर्थात बगीचा। तो बाबा ने कहा कल्प पहले मिसल फुलवाड़ी यहाँ तैयार करो, बाड़ी, फूल बाड़ी, वाड़ी इंग्लिश में लिखा जाता है, आंगन बाड़ी, आंगन बाड़ी, बच्चे जो रहते हैं ना वो भी लोग उसको वाड़ी कहते हैं, पर वो है बाड़ी, बाड़ी, तो खेत को भी बाड़ी बोलते हैं
राजस्थान में, खेत को बाड़ी।
तो पहला काम जहाँ तहाँ क्या करो, ज्ञान गंगा है फैलाओ, फुलवाड़ी बढ़ाओ, कर तो पहले वाली बाप की, तीसरा नया इन्वेंशन करो, नई रूपरेखा करो, महान कार्य करके दिखाओ। ये भावना की धरनी है, ये फलीभूत धरनी है। तो ये हो गया यहाँ पूरा। अभी दादियों से मुलाकात,
अब तो पार्टी नहीं चल रही,
दादियों से मुलाकात। बोलो संजय भाई, क्या बोला दादियों को बाबा ने? देखा, बाप को बाप आज्ञा मानते हैं। बाप को तुमने बुलाया तो बाप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। बाप आ गया,
बाप की आज्ञा मानो।
तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ? प्रसादी की बात कर रहे हैं। प्रसाद और प्रसादी एक ही समानार्थी रूप में बाबा ने इस मुरली में उपयोग किया है। इसका प्रसाद कहीं बोला है, कहीं प्रसादी बोला है, एक ही शब्द है, परंतु प्रसादी बड़े लेवल पे जो होता है उसको प्रसादी कहा जाता है। पर प्रसादी अर्थात प्रसाद भी हो सकता है, केवल प्रसाद। तो बाबा ने क्या कहा इस मुरली में?
प्रसाद लेके जाएंगे।
अरे अच्छा बताओ क्या कहा प्रसाद के लिए? क्या कहा? श्रेष्ठ संकल्पों की आहुति, श्रेष्ठ बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प ही आहुति है। तो बाबा ये अब तक तो बाबा, अब बाबा लेके जाने आए हैं। क्या लेके जाना है? बच्चों के लेके जाने नहीं, प्रसाद लेके जाने आए हैं। बाप ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, बच्चों को अर्पण किया।
ब्रह्मा ने साकार में यज्ञ के
पाठ पूरा किया, बच्चों को दे दी। अभी ब्राह्मणों का काम क्या है? श्रेष्ठ संकल्प से आहुति। तो यज्ञ की आहुति अर्थात संपूर्णता होती है तब आहुति दी जाती है। तो बाबा कौन सी आहुति चाहते हैं? श्रेष्ठ संकल्प, माना इसमें हमको प्रसाद किस कौन कौन मांग रहा है? एक तो बाबा, और दूसरा प्रसाद किसको देना है? और एक चीज बोलिए उधर, आत्माओं को बांटो। कौन सी? शिवरात्रि की सेवा करते करते केवल परिचय ही नहीं दो, क्या दो? बाप की झलक और अनुभूति, प्राप्ति और अनुभूति का प्रसाद बांटो आत्माओं
को। वो भी सुनाया था आपने, संकल्पों का भोग लगा सकते हो?
हाँ, वो भी इसमें ये नहीं है,
कहीं और है वो?
नहीं, इसमें तो नहीं है। अच्छा, बाबा ने कहा प्राप्ति जो है, प्राप्ति और अनुभूतियों का प्रसाद आत्माओं को बांटो, और बाप श्रेष्ठ संकल्प का प्रसाद बाप को। नीचे और बोला दादियों को कि ऐसा एक ग्रुप तैयार करो, संगठन, कि जिसमें ऐसी शक्तिशाली हो सारी कि जाननहार और करणहार उसका साक्षात स्वरूप दिखाई दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो, ऐसे महावीर कि जिनमें ऐसी धारणाएं हो कि माया का कोई भी रूप आ जाए परंतु वह धारणाओं से हटे नहीं। ऐसा जो ग्रुप है उसको नीचे बोला बाबा ने कि वो विघ्न विनाशक ग्रुप, ये विघ्न विनाशक ग्रुप की प्रसादी बाप को दो।
तो
ग्रुप बनाना ये, और दृढ़ संकल्प करना ये बाप को, और संसार को क्या दो? प्राप्ति और अनुभूति का प्रसाद बांटो। समर्थ स्वरूप में स्थित होकर असमर्थ आत्माओं को, असमर्थ आत्माओं को रहम दिल की आकर्षण का, रहम दिल की आकर्षण का प्रसाद बांटो। प्राप्ति और अनुभूति का उदाहरण दिया, जैसे जैसे क्या
प्रसाद बांटते हैं,
जैसे कोई फंक्शन होता है तो प्रसाद बांटते, तो आकर्षण होते, तो कई लोग आ जाते हैं बिना बुलाए। तो तुम क्या बांटो?
ये प्रसाद,
प्राप्ति और अनुभूति का प्रसाद, बाप की झलक और अनुभूति का प्रसाद। क्या बांटो? रहम दिल की आकर्षण से समर्थ स्वरूप में स्थित होके असमर्थ आत्माओं को,
जैसे मुरली के स्टार्टिंग में रूहानियत की ईश्वरीय झलक बच्चों से दिखाई देता।
तो ये यहाँ प्रसाद, ऐसा प्रसाद माना जो आए केवल बाप का परिचय दे दिया, एक ये हो गया, दूसरा उसको अनुभूति करा देना, ये है प्रसाद बांटना। उसको कुछ प्राप्ति का अनुभव करा देना, ये है प्रसाद बांटना। बाबा ये प्रसाद बांटने की बात,
कभी कभी बाबा कहते हैं प्रभु प्रसाद बांटो, तो तुम्हारे अंदर विशेषता और तुम्हारा प्रेम प्रसाद।
बाप आए हैं साकार वतन से, सूक्ष्म वतन से।
हाँ, फिर आगे रुको, आगे है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि
भूलना जाए ना भाई,
तब तक पकड़ लो, इधर उधर गया तो छूट जाएगा हाथ से,
बोलने से याद रहता
है।
आगे आगे, ये पैराग्राफ पूरा होने के बाद सेकंड पैराग्राफ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो ऐसा एक ग्रुप तैयार करो, पांडव शक्तियां क्या क्या करेंगे, तो वो भी ऐसा एक विघ्न विनाशक ग्रुप तैयार करो कि ये प्रसादी, इससे वातावरण वायुमंडल बनाओ, ये वायुमंडल बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ये क्या करेंगे, जो प्रसादी होती है आहुति की उसकी खुशबू चार और फैलती, तो खुशबू की खुशखबरी बाप साकार वतन से सूक्ष्म वतन ले जाएंगे और ये खुशबू ही गेट खोलेंगे।
कैसे
ये खुशबू ही गेट खोलेंगे, क्यों गेट खोलेंगे, क्योंकि वृद्धि बहुत हो रही है, वृद्धि बहुत हो रही है इसके लिए गेट खुलेंगे। फिर बाबा ने कहा ना वो बाप अकेले क्या कर सकता है, बाप ने आज तक कुछ अकेले किया? फिर बाप बच्चों की चिड़ चाट की, बाबा तो चले गए। फिर उसके बोले बाबा ने पूछा अरे क्या वायदा क्या है, साथ निभाओगे साथ रहोगे, तो क्या भूल गए वायदा? फिर बोला ना साकार में जब था, फिर बताया बाबा के बारे में कि जब साकार में था तो थोड़े लोगों के लिए था और थोड़े समय के लिए था, अभी तो निर्बंधन है तीव्र गति से हाजिरा हाजूर, जब बुलाओ तब हाजिरा, मतलब अभी वो बंधनों से छूट गया है, कोई बंधन नहीं अभी। हाँ वही
बोला क्लियर किया,
साथ छोड़ने की तो बात ही नहीं, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। ये दादियों से बात कर रहे बाबा, दादियों को बोल रहे ऐसा ग्रुप तैयार करो, फिर वो ग्रुप में से ऐसी एक आहुति निकलेगी, फिर वो आहुति की जो प्रसाद है वो सबको बांटो और उसकी जो खुशबू है वो बाबा ऊपर लेके जाएंगे और वो जो खुशबू है उससे गेट खुलेंगे।
ये हल्का बन गया
बाबा की जबरदस्त संस्कृत
है, साहित्यिक भाषा है ये साधारण भाषा नहीं है, ये हिंदी है,
पकड़ में नहीं आती,
ये हिंदी ऐसी हिंदी है कि इसको क्लिष्ट हिंदी है, क्लिष्ट साधारण हिंदी नहीं है कि जो मुरली साकार मुरली आत्मा समझ के बाप को याद करो, बाप आए हैं तुम्हें ले जाने, संसार को भूलो शरीर को भूलो दुनिया से नफरत आना चाहिए चलो ऊपर, ये है साकार मुरली,
साकार
शब्द शब्द यही शब्द यहाँ पे, इसमें बहुत सारे उदाहरण है, इसमें एक उदाहरण के ऊपर दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण पूरा नहीं हो तो उसके ऊपर ओवरलैपिंग तीसरा उदाहरण, वो चालू कहाँ से हुआ वही समझ में नहीं आ रहा है, एक ही वाक्य यहाँ से चालू हो रहा है वो अभी फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं है वो चालू ही है, जैसे ये फिर वो फिर जैसे वो फिर जैसे, फिर जैसे करते करते वो कहाँ एंड हुआ, तो चालू किसका जैसे बात बात में बात।
इसलिए साकार मुरली है राजस्थान की हिंदी और अभ्यक्त मुरली है यूपी की,
यूपी की
काशी की हिंदी।
सिंध की कहाँ जाएगी,
सिंध को छोड़ दिया,
तो कुछ है ही नहीं
सिंध, वो पुराना जन्म का
संस्कार।
तो ये थी दादियों से मुलाकात, उसमें और एक चीज है फिर मोह के बारे में, अभी तो वो मोह का एक लाइन है उसके बाद में पांडव से बोलूंगा, तो मोह बाबा बोल रहे हैं मोह से भी और ज्यादा क्या है, तो बलिहार, बलिहार होने से मोह तो एक अंजलि है, अंजलि है खाली, बस बस चुल्लू छोटा सा
बलिहार हो गए,
तो बलिहार हो गए तो उसके बाप तो सदा साथ है। फिर बाबा ने पांडव से पूछा पांडव क्या करेंगे, उन्होंने कहा बकरी ईद, अरे कोई भी ईद रहने दो, मैं का त्याग करना अर्थात ही ईद
मनाना,
ईद के बारे में बाबा ने किस के बारे
में, ईद बकरी
ईद की कहानी जो है ना वो इब्राहिम के साथ जुड़ी हुई है, इब्राहिम जो था सबसे पहला धर्म स्थापक, वो केवल एक इस्लाम का धर्म स्थापक नहीं है, वो तीन धर्मों का धर्म स्थापक है इब्राहिम, इब्राहिम के थ्रू तीन धर्मों की स्थापना है, एक है इस्लाम, एक है क्रिश्चियनिटी और एक है यहूदी धर्म,
एक और आपने
तीन 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 धर्मों की स्थापना इब्राहिम के द्वारा। इब्राहिम को हमारा जो चार्ट में हम जो उसमें दिखाते वो इतना सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जटिलता है। इब्राहिम सबसे पहले तो आदम बीबी, उसी के वंश में नीचे, ये क्रिश्चियन और इस्लाम की स्टोरीज है, हिंदू धर्म की नहीं, क्योंकि इस्लाम किसको मानता है और क्रिश्चियनिटी पैगंबर को मानता है, हिंदू में अवतारवाद है, अवतार मतलब भगवान शरीर धारण करते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म में भगवान शरीर धारण नहीं करते, वो पैगंबर को भेजता है, सबसे पहला पैगंबर एडम, उसके बाद में नोहा, नोहा की जहाज दिखाया ना 40 दिन तक बारिश चलती है, नोहा, नोहा के बाद में उसके बाद में इब्राहिम, अभी इब्राहिम और उसकी पत्नी सरा दिखाया है, उन दोनों को बेटा नहीं रहता है, बेटे कोई नहीं रहते, 90 साल की उम्र हो जाती है, वो तो अभी क्या करे, तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसकी जो दासी होती है हैगर, उसको भेजती है उसके पास कि वंश चले, तो हैगर के थ्रू उसको पहला बेटा होता है इसाक, अब इसाक का जन्म होने के बाद में कुछ समय के बाद में ये जो उसकी पहली पत्नी रहती है, मतलब जो पत्नी रहती है उसको बेटा होता है।
अच्छा, उसको भी बेटा
हो उसको हो जाता है बाद में।
कोई योग बल से हुआ या कोई से हुआ?
नहीं यहाँ योग नहीं, यहाँ तो भोगी वो तो भोगी दिखाते हैं इधर, योग का यहाँ नहीं। योग बल से खाली क्राइस्ट का जन्म है, इमैकुलेट कंसेप्शन उसको कहा जाता है, बाकी और कोई नहीं। पर वो भी वैसा नहीं होगा बाद में, वो तो अभी ये जो पहला है इसाक उसी के वंश में मोहम्मद का जन्म है नीचे। और ये जो पत्नी के थ्रू जो बेटा हुआ इस्माइल, उसी के थ्रू क्राइस्ट का जन्म है आगे। अब ये जो पहला दूसरा बेटा होता है तो आकाशवाणी होती है, जो पहली पत्नी है उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो घर से बाहर,
जो 90 साल वाली
है। नहीं नहीं पत्नी नहीं, वो दासी 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 और उसके बेटे को निकाल दो। हाँ, जो पहली दासी थी ना उससे बच्चा हुआ, क्योंकि अभी इधर बच्चा हो गया तो उसको निकाल दो, तो वो उसको निकाल देता है। फिर तो वो और उसकी इस्माइल वो लेके जाती है बच्चे को, रेगिस्तान में खो जाती है, फिर वो पानी निकलता है, वो अभी भी है वहाँ, झमझम का पानी जिसको कहते हैं, झमझम का पानी, वो उसका बड़ा महत्व है। वो उस बच्चे को बचाता है, फिर वो बच्चे के थ्रू ही आगे चल के मोहम्मद का जन्म है। अब ये जो दूसरा बेटा है इस्माइल, अभी इस्माइल जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब एक आकाशवाणी होती है कि तेरा अगर भगवान से प्यार है तो ये इस्माइल की कुर्बानी दे दो। तो बोलता है ठीक है, इब्राहिम उसका बेटा, तो बोलते ठीक है देता हूँ, तो लेके जाता है
उसको। एक इब्राहिम बेटा इसका
दोनों उसी के बेटे,
इस्माइल और
इसाक,
दासी वाला
इसाक,
और ये 90 साल
सराह का जो बेटा है वो इस्माइल,
तो उसकी पत्नी का।
हाँ, उसकी पत्नी का। तो इस्माइल को लेके जाता है और जैसे कुराड़ी से मारने जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अरे रुको, ये तो परीक्षा ले रहा था, तुम पास हो गए। तो वहां से वो बकरी जाती रहती है, बोली अभी इसकी बलि नहीं चढ़ाओ, उसकी बलि चढ़ाओ। तो वो उसकी बलि चढ़ाता है और तब से फिर चालू होती है बकरी ईद। ईद का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर वो वहां से चालू हो गया वो पो। अब ये जो स्टोरी है ये दोनों में आती है, कुरान में भी आती है, बाइबल में भी आती है। अब बाइबल कहता है वो जिसको बलि चढ़ाया वो था इस्माइल, पर कुरान कहता है जिसको बलि चढ़ाया जो बेटे को वो था इसहाक, क्योंकि वो इसहाक को ज्यादा मानते, क्योंकि इसहाक के जन्म में किसका जन्म है आगे, मोहम्मद का जन्म है। और फिर उसके बाद में क्रिश्चियनिटी जब बढ़ती गई आगे जन्म में, इधर जेकोब आया, फिर क्राइस्ट आया। क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो लोगों ने क्राइस्ट को ही सब कुछ मान लिया और वो क्रिश्चियन बन गए। तो क्रिश्चियन ने फिर इब्राहिम का महत्व को कम कर दिया, उन्होंने कहा क्राइस्ट ही एकमात्र बेटा है परमात्मा का, इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। पर उसके 250 साल बाद जब मोहम्मद का जन्म हुआ तो ये लोगों ने माना कि मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है, क्राइस्ट नहीं है। क्राइस्ट ने तो घोषणा की थी कि मोहम्मद आएगा, तो वो क्राइस्ट अंतिम पैगंबर है, इसके लिए वो क्रिश्चियनिटी अलग हो गया, इस्लाम अलग हो गया। तो बाबा ने कहा मैं का त्याग करना ही ईद मनाना, चाहे कोई भी ईद हो, फिर ईद उल फितर, ईद उल फितर,
ईद उल
बकरी ईद, और दो तीन है।
ईद उल फितर, ईद उल जुहा,
बकरी
ईद, बकरी ईद।
चलो अभी ये वहाँ पूरा हुआ, मेन मूल्य पे आ जाओ,
मारने पीटने वाला
मेन मूल्य में क्या बोला आज बाबा ने, कौन किसको देख रहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख रहा है और देखकर भाग्य विधाता खुश हो रहा है। कौन ज्यादा खुश हो रहा है, जो ये ज्यादा खुश हो रहे हैं या वो ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्यों क्यों खुश हो रहे हैं वो? इतने बच्चे और इतने समय से बिछड़े हुए बच्चे, उसको तो बच्चों को ज्यादा खुशी है उसको, क्यों?
क्योंकि बिछड़े हुए थे बच्चे।
अरे बच्चों को थोड़ी समझ में आता है कुछ,
बिछड़े हुए ज्यादा,
माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी ना, उनका बच्चा खो गया और बाद में मिला, तो बच्चे को तो पता ही नहीं,
बच्चे को पता ही नहीं,
ढूंढ रहा कौन, हम ढूंढ रहे थे वो ढूंढ रहा था, ये प्रश्न है,
ढूंढ रहे थे
हम ढूंढ रहे थे उसको कि वो हमको ढूंढ रहा।
लेकिन एक बात है, वो भी तो ढूंढ रहा होगा ना, तो बताए,
बोला है ना कि मैंने ढूंढा,
एक जगह क्या मैंने ढूंढा,
मनुष्य अल्प बुद्धि है, क्या वो भगवान को ढूंढ सकता है,
नहीं।
क्या उसमें इतना सामर्थ्य है,
नहीं,
कि वो अपनी क्षमता से परमात्मा को ढूंढ ले। उसके मन में संकल्प आया कि मैं ढूंढूंगा, तब उसने ढूंढा, चुना है, आई पिक यू, जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य, आई पिक यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। उसने 12 शिष्यों को चुना, कैसे चुना, भीड़ में से जा रहे हैं, हाँ तू आ जाओ, तुम आ जाओ, चुना, ये वही है, आ जाओ, तू आ जाओ, दूसरे नेक ने पूछा मैं, नहीं नहीं तुम नहीं, यू तू आ जा, क्योंकि ये 12 जो शिष्य थे इसी से क्रिश्चियनिटी की नींव था बनने वाली थी, इन्होंने वो पूरे विश्व में फैलाया क्रिश्चियनिटी। तो वो जो 12 आत्माएं थी उसने चुना, और वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है, आई पिक यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैंने तुमको ऐसे एक एक उठाया इस संसार से, क्योंकि यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे कार्य के लिए हो। उसका एक शिष्य आता है, वो बोलता है, वो उसके आंखों में देखता है बस, फॉलो मी, बस मेरे पीछे आ जाओ। दूसरा एक आता है, बुलाता है, बोलते जाओ उसको बुला के लाओ तुम्हारे भाई को, वो आता है दूसरा एक साइमन, तो आंखों में देखता है, तो बोलते क्या तुमने मुझे पहले देखा है पहले, तो बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। वो शिष्य बोलता है मैंने नहीं देखा तुमको कभी पहले, तो बोलते नहीं देखा, याद करो उस दिन बहुत पहले, कुछ सालों पहले, जब तुम एक झाड़ के नीचे बैठे थे और तुमको एक साक्षात्कार हुआ था ज्योति का, वो क्या था, वो मैं ही था। तो बोलते हाँ हाँ तुम ही थे, आगे पीछे। तो भगवान ने ढूंढा है, वैसे ही उधर भी दिखाते हैं, वो बोलता है ना क्राइस्ट बोलते हैं माई शीप्स विल हियर माई वॉइस, मेरी जो भेड़िया, मैं चरवाहा हूँ भेड़ियों को चराने वाला, जो मेरी भेड़िया होगी ना वही मेरी आवाज सुनेगी, बाकी मेरी आवाज नहीं सुनेगी। बाबा कहते हैं इस झाड़ के जो पत्ते होंगे वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो यही का ज्ञान तो शास्त्र में बढ़ गया ना फिर बाद में थोड़ा थोड़ा चाहते, तो बाबा कह रहे हैं अभी आगे का बहुत अच्छा वाक्य है, वो चार चीजें, बच्चों की विशेषता,
विशेषता और सितारे
की, सितारों की चमक,
रंगत रूह की, रंगत
रूह की, रंगत और रूहानियत की ईश्वरीय झलक, जितना बाप जानते हैं उतना तुम भी नहीं जानते, भूल जाते हो। तो बाबा ने आगे तीन खेल बताए इस मुरली में, पहला खेल, दूसरा खेल और तीसरा खेल। पहला खेल कौन सा है
सर, बिगनों का
नहीं, खेल है, तीन खेल करते हैं, एक पहला खेल करते हैं, एक है भूलने का खेल, दूसरा है आंख मिचौने का खेल, और तीसरा है अनजानेपन का खेल। तो सबसे पहले बाबा ने शुरुआत की, चाहे कितने भी विघ्न आए, सर्व विघ्न, सर्व प्रकार की परिस्थितियां, प्रकृति के तमोगुणी, प्रकृति की आपदाएं को एक सेकंड में अगर विजयी होना है तो उसके नशे और निश्चय की जो बात है वो बच्चे भूल जाते हैं। वो बात कौन सी है, जो कि पता है, वो जानते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, पर संस्कार तक नहीं आते, वो बात है वाह रे मैं,
पुरानी बात,
ये है मरजीवा जन्म का संस्कार, इसी को भूल जाते हैं बच्चे। और दूसरी बात है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये पहली जन्म का, अब इस जन्म का निजी संस्कार, जन्म का पहला बोध, जन्म की पहली स्मृति, ये तीन बातें ये भी भूल जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात सर्व संपन्न,
कितने
समर्थ स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थ स्वरूप, कहते हो ब्राह्मण और करते क्या हो। तो बाबा ने कहा देखो ये चीज किसके लिए है, वारे में ब्राह्मण आत्मा से क्या होगा, सर्व विघ्न, सर्व प्रकार की समस्याएं, तमोगुणी, प्रकृति के आपदाएं, एक सेकेंड में विजयी बनने का नशा और निश्चय की बात ये है, कौन सी, वारे में और मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो बच्चे ये एक वंडरफुल खेल खेलते हैं। आगे बोला इस वंडरफुल खेल को आप बंद करो,
तरस भी आता है, हंसी भी आती है,
बाप को तरस भी आती है, हंसी भी आती है इस बात में। तो पहला खेल ये, दूसरा खेल बोलो संजय भाई,
आंख मिचौनी का,
आंख मिचौनी का खेल कौन सा है, कभी कहते हैं वाह वाह और कभी कहते हैं हाय हाय, ये है दूसरा खेल। अभी है तीसरा खेल, सबसे बड़ा है तीसरा खेल, चालू कहाँ से होता है वाक्य और खत्म कहाँ होता है वही समझ में नहीं आ रहा है। वो खेल है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, पर ये तीसरा खेल करते हैं बच्चे। तीसरा खेल कौन सा है, बाप का बने, वायदा किया, प्रतिज्ञा की, मर्जी वा बने, फिर भी क्या करते हैं बाप, हाँ पुराने संस्कार, शूद्रपन के संस्कार, संस्कारों को छोड़ते नहीं है। फिर इसको समझाने के लिए बाबा ने बहुत सारा विस्तार किया है, जैसे तुम क्या करते हो, कोई रॉयल बच्चे होते हैं वो नीचे की चीज उठाता नहीं है, तो तुम्हारे है शुद्रपन के संस्कार, अशुद्ध वृत्तियां, अशुद्ध दृष्टि का परिवर्तन बाप ने कर दिया है, शुद्ध वृत्ति शुद्ध दृष्टि पवित्र वृत्ति पवित्र दृष्टि में, पुराना चोला शुद्र संस्कारों का चोला, अभी देखो शरीर रूपी चोला नहीं, आत्मा संस्कारों का चोला पहन लिया, ये एक नया बात है, आत्मा संस्कारों के चोला का क्या कर दिया, उसका पहले जो पुराना चोला था शूद्रपन का, उसको ईश्वरीय चोला बना दिया, ये परिवर्तन कर दिया, सर्व संपत्ति और संबंध के अधिकारी बना दिया, सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संपत्ति या संबंध के अधिकारी बना दिया, ये काम कर दिया बाबा ने। और तुम क्या करते हो, पुरानी चीज, सड़ी हुई चीज, सड़ी गली चीज, बेकार चीज, बिगड़ी चीज, विष को वापस सेवन करते हो, बाप को हंसी भी आती है और तरस भी पड़ता है। एक बड़ा खराब उदाहरण है, भक्ति में रहते हैं विषय वासनाओं की तरफ पुनः जाना, अर्थात जो जिसने थूका है उस थूक को वापस चाटना। ये सुनने को जैसा खराब लगता है ना, तो अशुद्ध वृत्तियां, बाप से वायदा क्या किया कि विकारों में नहीं जाएंगे, वापस जाना, तो अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि, फेंकी हुई, सड़ी हुई, गली हुई, जली हुई, बेकार, बिगड़ी,
सड़ी हुई,
सब छोड़ दिया। तो बाबा ने क्या किया, जो चीज का त्याग कर दिया है, जो वस्तु का चीज का बात का, अलग अलग जगह तीन शब्द यूज किए बाबा ने, एक जगह बोला वस्तु, एक जगह बोला बात, एक जगह बोला चीज, जब त्याग कर दिया उसको वापस स्वीकार करते हो, एक जगह बोला वापस धारण करते हो, शब्द साहित्य सम्राट है बाबा, तो वो अपने रिताब से चलता है, सागरों की लहरें कभी इधर कभी उधर, भाषा की सौंदर्य है उसके पास, तो कभी कहता है कुछ, कभी कहता है कुछ, तो जो चीज तुमने छोड़ दिया उसको तुम वापस ले रहे हो, इसको क्या कहेंगे, बाबा हंस रहे हैं, हंसी आ रही है उसको,
कौन हो क्या कर।
फिर बाबा ने आगे प्रश्न भी पूछा, अरे कौन हो, क्या कर रहे हो, वायदा क्या है, निभा क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, जानी जानन हार तो हो पर अभी करनहार बनाने का प्रोग्राम बनाओ। जानी जानन मतलब ज्ञान तो है, पर अभी कर्म योगी बनो, कर्म में लाने का प्रोग्राम, करनहार बनाओ मतलब कर्म, थ्योरी तो जानते हो पर इतना सब जानने के बाद में भी वापस जाकर कुछ मूवी देखने की इच्छा होती है ब्राह्मणों को, ये मूवी देखूं, वो सीरियल देखूं, फिर भी लगता है ये खाऊं वो खाऊं, जो कुछ छोड़ दिया था पहले, तो जो चीज महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, ये वाक्य बहुत सुंदर है, भीष्म ने एक ही बार प्रतिज्ञा की, बस उसके जीवन में इतनी सारी बातें आई कि अगर वो तोड़ देता अपनी प्रतिज्ञा तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, महाभारत का युद्ध का एक कारण भी भीष्म प्रतिज्ञा है, पर उसने जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, अविवाहित रहूंगा, कोई संतान नहीं होगी मेरी, और जो कुछ है जिस सिंहासन पर जो भी बैठूंगा अपने पिता की छवि देखूंगा, ये दो प्रतिज्ञा उसने की, तो सारे बादल और वर्षा फूल देवता फूल डालने ऊपर से, ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा, तो महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं, और महान आत्माएं एक बार जो चीज को छोड़ देते हैं उसको वापस मुड़कर भी नहीं देखते। आर्मी में एक नियम है, अगर आर्मी में ये सिपाही सारे सैनिक है इधर, इधर युद्ध हो रहा है, तो सिपाही जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, एक बीच में खाई आ गई, तो वहां पे एक पुल बांधते हैं, इधर पहुंचने के बाद पुल को तोड़ देते हैं, वापस जाने की डर के मारे भागना थोड़ी ना है, जिनकू कि वह मरू युद्ध आमुचे पूर्ण करू, मरेंगे या जीतेंगे वापस नहीं जाना है, ये संन्यास का भी नियम है, इसको कहते हैं कट द ब्रिजेस, एक बार इधर आ गए कि कोई बंधन नहीं, फिर इसके लिए जो लोग संन्यास लेते अपने सारे सर्टिफिकेट जला देते मेडिकल के इंजीनियरिंग के, ताकि वापस जाके कुछ करने की इच्छा ना हो,
अच्छा सर्टिफिकेट जला,
सर्टिफिकेट जला देने का, मैंने भी ऐसे ही किया था, जब मुझे परम वैराग्य आ गया था मैं सारे सर्टिफिकेट जलाने के लिए नहीं, पर वो जलाने दिए, छिपा दिए सब घर वालों ने, परम वैराग्य की अवस्था थी तो सारा बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने बात सुनी थी, वो तो है थूल, वो भी तो भक्ति मार्ग था तब इसके लिए, तो इसको कहा जाता है कट द ब्रिजेस। एक बार इधर आने के बाद वापस जाने का मार्ग ही ना बचे कि वापस जाओ संसार में नौकरी करो थोड़ी, कुछ और करो, कुछ कमाओ, ये करो, ये संन्यास में तो पुनः ये तो द्विज है।
सही।
तो इसको कहा जाता है कट द ब्रिजेस। तो एक बार जो चीज छोड़ दी उसको वापस नहीं देना है। टीवी एक बार छोड़ दिया ना, सीरियल देखना तो छोड़ दो, मूवी देखना छोड़ दिया तो वापस देखने की इच्छा ना हो, ये नवी नई मूवी है थोड़ी अच्छी होगी, सेवा समाचार वो अलग बात है, उसमें वो सब ठीक है, परंतु विकार का आकर्षण बहुत जबरदस्त है संसार में। विकार टीवी टीबी की बीमारी कहते हैं बाबा। क्या है उसमें कि अच्छी बातें तो बहुत सारी है, पर हमारे मन की स्थिति ऐसी है, मन की वृत्ति ऐसी है कि वो बुरी को, बुरी बातों को जल्दी कैच करता है। आप न्यूज देखेंगे, न्यूज तो देख रहे बहुत अच्छा है, पर बीच में एडवर्टाइजमेंट भी रहती है, वो न्यूज तो भूल जाएगी पर एडवर्टाइजमेंट में जो दिखा वो अंदर घुस जाएगा। और जो वो 3D है, एक किताब अगर किसने पढ़ी 5 साल पहले, वो किताब में क्या था वो याद नहीं है। एक मूवी देखी 5 साल पहले, क्या था वो था वो था वो था, अभी ये सीन आएगा, अभी ये सीन आएगा, सब याद है। क्यों? क्योंकि वो 3D है, मूविंग है, जो मूविंग चीज होती है वो छप जाती है। कुछ देख लिया, इसलिए अश्लील साहित्य और अश्लील सिनेमा, ये जो कि बाबा अपना ही उदाहरण देते हैं, बड़ा वैरागी ख्याल थे पर जब देखा सौभाग्य शरीर तो सारा वैराग चौपट हो गया। अभी वो मूवी में क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होगा खास, उसकी तुलना में आज की मूवीज देखो उसमें क्या कुछ नहीं होगा। वो जो फीमेल होगी वो भी कोई मेल बना होगा, तब तो स्त्रियों को अलाउड भी नहीं था, तो वैसी मूवी देख के वैराग्य खत्म होगी, वो भी किसका, सृष्टि के आदि पिता का। तो ये ब्राह्मण आत्मा है इस विकारी वातावरण में, जहाँ की हर मूवी में काम विकार का, उसको जब तक आज एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उसमें एक फिल्म का डायरेक्टर लिख रहा था कि आजकल लोगों को पारिवारिक मूवी पसंद नहीं आती है, आजकल को रोमांटिक मूवी भी पसंद नहीं आती जिसमें काम विकार का तड़का लगा हो, अगर वैसी मूवी परोसी जाए तो वही चलती है, ऐसे शब्द थे उसमें उनका तड़का। और वो जब ऑडियंस को दी जाती है वो सबसे ज्यादा चलती
है, शब्द भी ऐसे जो भूलेंगे नहीं वो
तड़का लगाया हुआ रहता है। जो एडवर्टाइजमेंट होती है ऐसी थोड़ी ना होती है एडवर्टाइजमेंट, उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं कि जो छप जाते हैं, वो संकल्प नहीं चलेंगे, वो संकल्प आएंगे स्वप्न में, स्वप्न दोष के रूप में वो प्रकट होंगे। इन विकारों में वायुमंडल में ही वासनाएं हैं,
इन सब वासनाओं को समाप्त करने वाले,
इन वासनाओं को, और जो जन्म जन्म आत्मानिक, जन्म जन्म आत्मानिक काम को भोगा है, उसके अवचेतन मन में काम वासनाएं समाई हुई है, उसको खाली ट्रिगर की आवश्यकता है बस। एक सन्यासी है, वो सन्यास धारण करके जीता है ठीक 50-10 साल 15 साल, पर वो जैसे संसार में आता है स्त्री को देखता है उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म भोगा है, एक जन्मांध है, जन्म से स्त्री को देखा ही नहीं, उसके अंदर भी काम वासना है। क्यों? क्योंकि आत्मा में संस्कार भरे। कल की मुरली में था ना, तमो प्रधान मुर्दे बन गए तुम लोग, कल की मुरली में था, मनुष्य कुछ काम के नहीं है, मिट्टी को तो कुछ भी काम के नहीं है, कोई जलाते है, कोई दफन करते है, कोई कौए को दे देते है कुएं के पास, ये जो है मनुष्य कुछ काम के नहीं, तो काम विकार ने तुमको भस्म कर दिया है, काला बना दिया है। तो आत्मा की शक्ति जो गई है वो किससे गई है? क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वो जो भी है विकार है, विकार तो व्यर्थ संकल्प भी विकार है वो, तो अगर देखा जाए पर आत्मा की शक्ति का पतन जो हुआ है वो किससे हुआ है? काम से। क्योंकि काम क्यों? क्योंकि काम में बहुत ज्यादा देहभान की आवश्यकता होती है, वो छोटे मोटे देहभान से काम नहीं होता है उसमें, बहुत ज्यादा देहभान। और काम विकार में जो सुख प्राप्त होता है जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है वो अतिंद्रिय अवस्था का ही सुख होता है, वो अतिंद्रिय सुख होता है, उसकी जो श्रेणी है वो अतिंद्रिय। योग में जो परमानंद चरम उत्कर्ष है वो क्षणिक मात्र होता है, पर वो भी अशरीरी अवस्था होती है उसकी। उसके जो स्मृति पटल पे जो संस्कार पड़ते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार, बाबा कहते ना अगर एक बार भी काम बिगाड़ तो 12 महीने तक इधर आना नहीं है, साकार महावाक्य। मुंह नहीं दिखाओ बाप को, क्यों? क्योंकि शक्तियां नष्ट होती। जिस वीर्य के एक बूंद में नई आत्मा को शरीर जन्म दे रहा है, शरीर का उत्पत्ति हो रहा है, उसमें अनंत शक्तियां भरी है, वो कोई साधारण नहीं है। उसकी एक बूंद अगर निकलती है तो शक्तियां कम होती है। इसके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ द सीमेन, वीर्य जो है वही शक्ति का केंद्र है। वीर्यवान पुरुषों की इस संसार में आवश्यकता है। इसके लिए विवेकानंद क्या करते हैं, मुझे केवल ऐसे वीर्यवान पुरुष चाहिए 100, मैं दुनिया को बदल दूंगा, ऐसे ब्रह्मचारी कि जिनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बस उनको भगवान उनके साथ है, ऐसे वो कहने वाले। तो ऐसी बात है, तो जो चीज एक बार छोड़ दी, ये चीज जो है ना बाकी छोड़ने के लिए नहीं, एक ही चीज के लिए। अभी इसमें अश्लील साहित्य होता है, साहित्य संसार में ऐसे तमोगुणी लेखक हैं जिनकी हिंदी, जिनकी इंग्लिश, जिनकी भाषा बहुत सुंदर है लिखने की स्टाइल, पर अपनी स्टाइल को किस लिए उपयोग कर रहे हैं, ये लिखने के लिए, अश्लील साहित्य की निर्माण करने के लिए। और उससे क्या हो रहा है, वो सब में बांट रहे हैं जिससे। तो अगर एक योगी भी अगर उसको पढ़ ले तो वो भी पतन हो सकता है उसका, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी हो, चाहे 40 साल से ज्ञान में हो, अगर उसको ऐसी कोई किताब दे दी जाए इसको पढ़ो कि जिसमें काम वीर विकार का विस्तृत वर्णन होता है एक एक चीज का, तो उसके अंदर भी वही इच्छाएं जागृत होगी, उसको भी लगेगा इसको हाथ लगाओ क्या होता है देखने के लिए, वो वहां से चालू होता है।
कितना जबरदस्त रास्ता पकड़ा
हाथ लगाने के बाद में ये जो हाथ लगता है ना, इससे सुख की अनुभूति होती है। जैसे जिलेबी खाने से, गुलाब जामुन खाने से सुख मिलता है ना, तो उसका जो सुख है वो 100 गुना ज्यादा है। इसके जो संस्कार है कम पड़ते हैं, पर वो जो संस्कार क्रिएट होते हैं, अंग अंग में वासनाएं हैं। बाबा का है तुम्हारे अंग अंग क्रिमिनल है, क्रिमिनल स्पर्श से, स्पर्श तो बहुत आगे की बात है, पर वहां से वासनाओं का जन्म होता है और उसके जो संस्कार पड़ते हैं वो इतने गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि 10 साल हो गए, 10 साल से ज्ञान में चल रहे, पर जो 10 साल पहले जो कर्म किया अगर उसकी आज भी स्मृति आ जाए थोड़े क्षण के लिए, तो वही इच्छा वापस हो जाती है, उसकी वापस वही इच्छा होती है, वही चीज करने की। और वो ऐसी इच्छा होती है कि उस समय ज्ञान और योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका फोर्स जो होता है वो सुनामी की तरह होता है। काम विकार का जो फोर्स है वो प्रचंड लाट ऐसी जो तरंगे होती है उसकी तरह होता है। उसके सामने ज्ञान योग तपस्या भाग्य जो मुरली का भी डिस्कशन किया वो सब खदाम जीरो हो जाते, क्योंकि वो फोर्स इतना ज्यादा है, क्योंकि वो संस्कार केवल एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है, क्योंकि 63 जन्म आत्मा ने भोगा है उसको। कुछ जन्म हम सन्यासी होंगे पर सब तो नहीं ना, कुछ जन्म बहुत अच्छे भक्त होंगे पर सब जन्म तो नहीं ना, नहीं पूरा बात कर रहा हूँ मैं। काम को तो भोगा है आत्मा ने, उसकी टेस्ट उसमें है। इसके लिए एक स्वामी योगानंद करके है, वी सेज टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का जो गिरना है वो केवल इसकी टेस्ट, एक बार टेस्ट मिल गई कि गिरना चाहिए। सब वो जितनी लड़ाइयाँ हुई है किसके कारण हुई है बताओ, सारे लड़ाइयों के पीछे कारण स्त्री, एक स्त्री और उसका सौंदर्य, स्त्री के अंग अंग में आकर्षण, अंग अंग में, एक ही अंग ऐसा है जो आकर्षण से मुक्त है और पुरुष उसको देखते ही आकर्षित है।
इसलिए बोला नरक का द्वार है,
द्वारम किमे कम नरक किनारी। कामिनी और कांचन, बस ये दो ही चीजें हैं जिनको जीतना, एक है कामिनी अर्थात स्त्री, कांचन अर्थात धन, मेन ये दो चीजें कामिनी कांचन, इसी से बुद्धि जाती है। स्त्री यहाँ तक कि निर्देश दिया हुआ है सन्यासियों के लिए, अगर कोई पुतला है स्त्री का उसको भी नहीं देखो, उसको भी नहीं देखो पुतले को। अगर रामकृष्ण परमहंस ने तो यहाँ तक कहा है अगर कोई एक भक्त है स्त्री, वो स्त्री बहुत श्रेष्ठ भक्त है परमात्मा प्रेम में, वो स्त्री जमीन पे जैसे जैसे विरह अग्नि में तड़प रही है कि हे प्रभु तुम मुझे कब मिलोगे, तो भी उसको नहीं देखना है सन्यासी, क्योंकि वासनाओं का कोई भरोसा है, वासनाओं का कोई भरोसा है, वो माँ को नहीं देखता है, बाप को नहीं देखता है, किसी को नहीं देखती है वासना, वो उम्र को नहीं देखता है। अभी एक पुरुष है एक स्त्री है, वो दोनों का बहुत अच्छा संबंध है, वो उसको माँ समझता है, वो उसको बेटा समझती है, वो कुछ भी समझता है, परंतु दोष किसका है, उम्र का दोष है। हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, सबको आत्मा समझते हैं, बहनें समझते हैं, परंतु फिर भी दोष है किसका है, उम्र का ही दोष है, हमारी भावनाओं का दोष नहीं है, हमारी बहुत अच्छी भावना है, फिर भी एक स्त्री और एक पुरुष एक ही कमरे में ना बैठे एकांत में, ये नियम है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वासनाएं जागृत। हमारे पास वो साध्वी आते हैं मैग्नेट में, मेरे पास भी आए थे, तो वो अगर कोई पुरुष बैठा है 12 घंटे तक वहां नहीं बैठे उस जगह, क्योंकि वो पुरुष के वाइब्रेशन से उधर कंपन प्रस्फुटित होते रहते हैं शरीर से, अलग से रखते हैं जितनी साध्वी है, क्योंकि उनमें ब्रह्मचर्य सबसे मेन है। यहाँ बैठी है हमको लगा रहे क्या है, चलो हम बात कर, SMS करना, WhatsApp और ये सारे जो है ना, इससे नए नए संबंध बनाना, किसी को बहन बनाना, किसी को कुछ बनाना, किसी से बहुत अच्छा ये रखना, जरूरत नहीं है, क्योंकि वासनाओं का भरोसा नहीं है। वासनाएं ऐसी है कि कभी भी जागृत होती है, कभी भी जागृत हो सकती है, वो अलग बात है, पर उसी बाबा ने सिनेमा को सीन की माँ कहने वाला भी वही है ना, सिनेमा को सीन की माँ कहने वाला भी वही है।
अभी तो उदाहरण सुना है कि बाबा ने एक फिल्म देखी थी और क्या होगा,
और कौन सी फिल्म देखी और क्या दिखाया होगा उसमें, कुछ नहीं होगा,
फिल्म देखनी चाहिए,
मैं ढूंढी थी नहीं है, अवेलेबल नहीं है कहीं, उसका केवल फोटो अवेलेबल है, नहीं मैंने भी ढूंढा था नहीं मिली, तो जो चीज एक बार छोड़ दी उसको वापस लेना नहीं, ये खाली काम बेकार के लिए, ठीक है, मोर और पपीता, पपीता के दो वृक्ष है उसके आंसू, साइंस इसको नहीं स्वीकार करता है, मोर का भी रिजेक्ट, मोर का रिप्रोडक्शन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा कैसे होता है, उसमें ये बात है ही नहीं, आंसू वाली दो तीन जगह से पढ़ा कहीं नहीं,
पर वो विकार में तो नहीं जाता
है, विकार में तो नहीं जाता है, पर वो कैसे होता है वो उसका दिया नहीं है पूरा डिटेल, पर ये आंसू वाली बात तो कहीं नहीं है साहित्य में, कहीं नहीं,
आपने देखा था ना,
वो आप कुछ बता रहे थे उस दिन,
हाँ।
कुछ बता रहे थे बट है नहीं, तो जो
चीज तो
होगा अभी पता नहीं, अभी बाबा कह रहे हैं तो होगा, अभी साइंस थोड़ी पहुंचा है वहां तक, तो जो चीज एक बार छोड़ दी, जो चीज एक बार त्याग दी, जो चीज एक बार फेंक दी, जो चीज एक बार थूक दी, अभी उस थूक को वापस चाटने का संकल्प नहीं करो,
छड़ान दे, छड़ान दे,
छड़ान दे, उसमें दुर्गंध है, बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े तपस्वियों का पतन हुआ है, ऐसे ऐसे महात्माओं का पतन हुआ है, केवल पुरातन काल में नहीं, अभी अभी भी कई सारे संसार में आज भी जो जाने माने गुरु है उनका भी पतन हुआ है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर लिखी हुई किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, मेरे पास किताब है आसाराम जी बापू का, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य नहीं, खुद ही लिखे हुए, खुद ही लिखे नहीं, हाँ, तो आत्मा देखो, आत्मा कई अवस्थाओं से जाती रहती है ना, जवानी में ब्रह्मचर्य रहता है, पर एक बार वो टेस्ट एक बार लग गई ना कि उसके सिवा नहीं होता है, आदमी को एक बार वो टेस्ट मिल गई कि वही चाहिए, फिर मरनासन्न भी हो जाए तो वंस मोर, बस एक इच्छा और है, एक ही बार बस, और फिर उसके बाद में शरीर छोड़ूंगा,
शुरू में तो अच्छी
है, ययाति राजा
कि आसाराम बापू ने कुछ किया,
होगा अभी तो इतने साल से तो बहनों ने तो कराया है, छोड़ती है वो जो भी है, परंतु हमको सीखना एक एक ही चीज है ये वाली बात, बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म। अच्छा ओम शांति।
पूरी मुरली खत्म हो गई,
मुरली हो गई ना, यही तो पूरी हो गई, हो गई साकार अभी तो दिनों हो गया ना, मेन मुरली दादियों से मुलाकात यूपी हो गया,
हो गया
वो हो गया आगरा हो गया,
एकता की नींद थी
नेचुरल। कल की मुरली में आत्मा के लिए चार पांच बातें थी, आत्मा इंडिपेंडेंट है, आत्मा के एक आत्मा के दूसरा आत्मा इंटरफियर नहीं कर सकती, तीसरा था नेचुरल, जैसे तुम शांति में बैठते हो दुनिया वाले ही नहीं जानती, यह है नेचुरल शांति।
तुम चुप बैठे हो,
ओम शांति
ओम शांति। तो प्योरिटी बढ़ाने के लिए आप क्या साधना करते हैं?